इसी अवस्था में भी इतनी सारी भक्ताएं जिसका मतलब श्रद्धा भक्ति होती है। मैंने सुन रहा था कि बहुत सारे भक्त बता रहे थे कि चल के आए आज राधा की दया मंदिर में, तो बहुत ही अच्छे है। मतलब इसका अर्थ होता है कि भगवान का ऊपर कितनी श्रद्धा कितनी प्रेम है, जिसके लिए सब बाधा को टपकने के बाद भी ये राधा की दया मंदिर प्रांगण में आ जाएंगे। बहुत ही हार्दिक स्वागत सबको। मैं सोचा था कि आज तो ज्यादा कुछ भक्त लोग नहीं आएंगे, मैं तरह कीर्तन करके छोड़ दूंगा, लेकिन इतने भक्तों को देखने के बाद मेरा मन में बहुत ही आनंद आया है, तो मैं ब्रश करूंगा आज का दिन में कुछ बताने के लिए। जय राधा माधव कुंज बिहारी,
I'm
ভাগবত কি যায়, কার্তিক মহিনা মহামহোৎসব কি যায়, দীপদান কার্যক্রম কি যায়, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। হরে কৃষ্ণ। তো আজকা দিন মে আমরা চর্চা করেন কার্তিক মাহাত্ম্য তথা দীপদান আন্তরাষ্ট্রীয় কৃষ্ণ ভাবানীতে সঙ্গে শ্রী গোপালজি দীপদান প্রথাকে চালু দিয়েছে। নেই তো কোই মন্দির মে দীপদান কাজ উৎসব কিছু তরিকে বনাতে কি জিসকে কহতে কি আকাশ মে দীপ জ্বালানে কা উপর মে। লেকিন শ্রী গোপাল ইস দীপদান কা মাধ্যম সে সবকো ভক্তি মার্গ মে লেকর আনে কে লিয়ে সবকে দ্বারা জন্তুয়া কে দ্বারা ভগবান দীপদান মহাত্ম প্রচার করতে গোপাল দীপদান উৎসব আন্তরাষ্ট্রীয় কৃষ্ণ তথা ঈশ্বর কী মন্দির মে আপনার দেখ সকতে কি কই ভী ব্যক্তি আয়ে তো দীপদান কাজ মৌকা মিলতে দূসরা কই ভী সংস্থান হ্যাঁ। দীপদান কাজ অর্থ হতো কি দীপদান মতো ভগবান দীপ চড়ানো কাজ আর আকাশ মে ডাল গোবার পেলে নিয়ম বনায় কি দীপদান কাজ মাধ্যম সে ব্যক্তি ভগবান জুড়ে জিসকে সবকে লিয়ে গোপাল নিয়ম বনায় কি কই ভী আয় ভালো কি ভক্তি মার্গ মে নহে না রে পাকর ও ভগবান সামনে ভগবান দীপদান শ্রী গোপাল জি বলতে কি দীপদান কাজ অর্থ হতো হ্যাঁ জিনে দীপদান মে ভাগ লি উনকা জীবন মে জিতনে সারে দান কি জেসা কই ওজনদার ওজন করতে যে যন্ত্র রাখতে হ্যাঁ এক সাইড মে আপ রাখ দিদি আপনি জিতনে সারে পোকারটা দান করলো উসকো রাখি এক সাইড মে আর এক সাইড মে রাখি দীপদান তো দেখি দীপদান কাজ সাইড থাড়া ঝুঁকতে রাখে মতো দীপদান সবসে অধিক মহত্বপূর্ণ জিসকে লিয়ে শ্রী গোপাল সবকো চাহতে থে কি দীপদান কাজ মাধ্যম সে ভগবান সাথ সম্বন্ধ বনায় জিসকে লিয়ে কার্তিক মহিনা ভর এ দীপদান কার্যক্রম চলতে কার্তিক মহিনা কাজ উপলক্ষ মে শ্রী গোপাল জি কে কি কার্তিক মহিনা কাজ অর্থ কাজ হ্যাঁ সেল অফ ভক্তি। सेल कार्ड सबको पता होगा जैसा कोई बाजार में कुछ सेल लगता है ना जनवरी महीना में गणपति में कुछ सेल लगता है तो आपने एक योजना बना ली कि मेरे को एक गणपति उत्सव में कि दिवाली में दो साड़ी खरीद करना है तो दो साड़ी का योजना बनाकर अपने मार्केट में गए तो मार्केट में जाने के बाद देखा कि दो साड़ी खरीद करने के लिए जितना पैसा मैंने लेकर आया हूँ उसी में उसी पैसा के द्वारा मैंने चार साड़ी खरीद कर सकता। तो माता जी लोग कितना खुश हो जाते कि चलो एक मौका आया सेल का बहाना में मेरे को चार साड़ी मिल जाए और बहू जी भी सोच रहे थे कि चलो मेरे को पैंट शर्ट लेना है धोती कुर्ता लेना है तो एक में जैसा लिखा रहता है ना दुकान पे बाय वन गेट टू फ्री। तो ये कार्तिक महीने को बोलते हैं कि सेल ऑफ भक्ति मतलब भक्ति का सेल होता है
गोपाल जी वर्णन की कि जैसे कि सेल लगता है कभी कोई दुकान में, जैसे आपका मन में विचार नहीं था कि मेरे को कुछ खरीद करना है, लेकिन आपने देख लिया कि सेल लिखा है, सेल SALE सेल, तो सेल देखने से ही भौतिकवादी तथा तो कोई भी व्यक्ति का मन तो एकदम पटक जाते हैं, अरे सेल लग गया चलो मेरे को कुछ खरीद करना है, तो सेल का बहाने में जाकर दुकान में कुछ ना कुछ खरीद कर लेते हैं। वो ये सोचते नहीं कि अरे सेल मतलब एक लिख लिया एक शब्द है, लेकिन सेल का बहाने में ज्यादा कुछ खरीद करना पड़ता है। तो गोपाल जी कहते हैं कि कार्तिक महीना मीन्स द सेल ऑफ भक्ति, मतलब थोड़ा भक्ति कीजिए तो इसमें ज्यादा फायदा मिलता है, इसके लिए कहते हैं कि सेल ऑफ भक्ति। मैं पहले प्रवचन पढ़ रहा सुन रहा था गोपाल जी का, इसमें गोपाल जी कार्तिक माह तक वर्णन की कि कार्तिक महीने में थोड़ा अगर अपनी भक्ति दी, जैसे थोड़ा भी अपने भगवान को आकर अपने दीपदान दिखाए, दीप दिखाए, थोड़ा घर में होली करता होली भजन की, तो इसके द्वारा आपने बहुत सारे फल का प्राप्त कर सकते। ऐसे ही तो भगवान को मिलने के लिए भगवान ने स्वयं बताते हैं कि पत्तम पुष्पम फलम तोयम जो मैं भक्ता आवेदन से, भगवान को पत्ते के द्वारा जल के द्वारा थोड़ा फल के द्वारा भगवान अप्रोच कर सकते हैं। अगर किसी का मन में विचार आए अरे ये तो लिखा लिख दिया है किताब में कि पत्तम पुष्पम फलम तोयम, जब भगवान खाते खा लेते हैं क्या, इसके ऊपर गोपाल जी वर्णन की। ये गोपाल जी ने एक बार आर्य समाज के प्रधान व्यक्ति को मिली, तो आर्य समाज का मैं थोड़ा बता देता हूँ आर्य समाज के ऊपर, जो कि ये आर्य समाज जो है विशेष रूप से यूपी एमपी उत्तरांचल सब जगह में ज्यादा प्रभावित करते हैं। ये आर्य समाज कोई भी शास्त्र ग्रंथ के ऊपर कुछ भी विश्वास नहीं, they don't believe any शास्त्रों, शास्त्रों पर कुछ भी उनको विश्वास नहीं, मतलब कि कोई भी शास्त्र हो तो झूठ होता है, भगवान बोलकर कुछ नहीं। तो ऐसे आर्य समाज का प्रधान महान जिन्होंने गोपाल जी के ऊपर मिले थे 1971 में मिले, तो गोपाल जी को पूछा स्वामी जी आपने बताते हो कि उसके पहले दिन गोपाल जी ने एक प्रवचन की थी कि किस तरीके से भगवान को खिलाना है, तू जी आर्य समाज का प्रधान, वो प्रवचन सुनने के बाद उनका मन में कुछ शंका आ रहा है, गोपाल जी ने बताया कि भगवान को आप इसी तरीके से खिला सकते हो, भगवान खाते रहते हैं भगवान सोते भी है, तो उनका मन में कुछ शंका आ रहा है, तो उन्होंने पूछने लगा कि स्वामी जी कल आपने बताया कि भगवान खाते हैं भगवान सोते हैं, आप जरा मेरे को प्रूफ करके दिखा सकते कि भगवान खाते हैं। तो गोपाल ने बताया कि भगवान तो निश्चित रूप से खाते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं बताया कि अस्मानी मतलब मैं स्वयं खाता हूं। तो आर्य समाज का प्रधान मंत्र तो करने लगे नहीं मेरे को विश्वास नहीं हो रहा। तो गोपाल जी ने उनको एक बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रदान मतलब एक एग्जाम्पल प्रदान उन्होंने बताया कि देखो आपको मन में ये विश्वास नहीं है कि भगवान खाते हैं, बोलता नहीं मेरे को विश्वास नहीं होता, बोलते आपने प्लेन में जा रहे हो आपने फ्लाइट में कुछ जा रहे हो तो आपने टिकट खरीदी है, तो उसी टिकट के द्वारा आपने जिस जगह पर आपने चुने हो उसी जगह में आप जा सकते हो, लेकिन अगर आपका मन में विचार रहे कि मेरा पॉकेट में टिकट है मैं कैसे उसमें जा सकता हूँ, आपका पॉकेट में टिकट है बोल के आप जा रहे हैं, मतलब भगवान को अगर आपको खिलाना है तो भगवान को श्रद्धा के द्वारा अगर आपने जो भी कुछ देते हो भगवान जो भी कुछ देते हो, मतलब नहीं कि मछली मिट्टी भी मेरा मन में भावना आ गए तो मैं भी खिला देता हूं, ऐसा नहीं। तो उसी आर्य प्रधान आर्य समाज का प्रधान अंतिम गोपाल जी को बात को स्वीकार कर, इसी तरीके से भगवान का ऊपर अगर किसी को विश्वास रहे जी भगवान खाते हैं तो भगवान खा भी नहीं कैसे। एक देवता थे जिसका नाम है विद्याधर, जिसका कहानी भगवान ने वर्णन भी किया है, तो विद्याधर इतना सुंदर है दिखने में इतना खूबसूरत है हर समय एकदम चमकाने वाला ड्रेस पहन के घूमते रहते और बहुत सारे गोल्ड बहुत सारे ऑर्नामेंट्स वगैरह पहनकर वो विद्याधर देवता घूमते रहते हर जगह, कभी जंगल में कभी जल में कभी इधर कभी उधर, जिस तरीके से नारद मुनि घूमते रहते हैं बिना बजा कर, नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमण नाम, तो इसी तरीके से इसी विद्याधर हर जगह में घूमते रहते थे और देखने में बहुत ही खूबसूरत है। और इसी खूबसूरत के कारण उनका मन में बहुत अहंकार आ रहा है कि मेरा माफी इतने सुंदर कोई नहीं है दुनिया में, कोई विश्व में इतना सुंदर नहीं है। तो उन्होंने सोचने लगे कि मैं कितना सुंदर हूं और मैं भी जिसको भी देखो वो मेरे से कुत्सित रहता। इसी तरीका से उन्होंने एक बार एक जंगल में गए घूमने के लिए। जब जंगल में घूमने के लिए चले गए तो ऐसा घूमते 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 ओंगिरा ऋषि उधर पहुंच गए। तो ओंगिरा ऋषि देखने में इतना खूबसूरत नहीं है, काला कुला है, देखने में काला है। तो उनको देखकर विद्याधर को इतना अहंकार आ गया कि कहने लगे कि ये मुनि ये ऋषिया आप देखो आप कितने काले हो और मैंने कितना खूबसूरत हूं। तो ओंगिरा ऋषि का मन में बड़ा दुख आया कि मैं खूबसूरत नहीं हूं बोल के मेरे को निंदा कर रहे हैं। तब ओंगिरा ऋषि ने उनको श्राप दिया। कैसे श्राप मिले ना, विद्याधर इतने खूब सुंदर इतना खूबसूरत लेकिन ओंगिरा ऋषि के श्राप के द्वारा उन्होंने बन गए थे सांप। जब सांप बन गए उनका मन में दुख आ गए भूत, अरे मैंने इतना खूबसूरत भागवत में बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किए मैंने इतना खूबसूरत था लेकिन मैंने क्या हो गया ऋषि का चरण में मैंने अपराध की जिसके कारण मैंने आज सब बन गए सांप हो गए। तो श्राप होने के बाद वो जंगल में घूमते रहते हैं लेकिन उनका मन में बहुत दुख है कि मैंने वो ऋषियों के चरण में मैंने अपराध की जिसके लिए मेरे को श्राप बना था। ऐसा घूमते घूमते एक दिन एक विद्याधर रूपी श्राप भूल गए तो वही ओंगिरा ऋषि का आश्रम में तो जाकर ओंगिरा ऋषि के पास जाकर उन्होंने रोना चालू किया। कहने लगे हे मुनि हे ऋषि आप मेरे को क्षमा करो। ओंगिरा ऋषि कहने लगे कि मैंने मेरा मुखार बिंदु से मेरे जो वचन निकल गए उसको भी मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ लेकिन आपका मन में जो दुख आ गए जो पश्चाताप आया आपका इसके मैं कुछ सलाह को दे सकता हूँ। अगर भगवान कभी भी भगवान का चरण आपका मस्तक में रख दे तो आपको ये जीवन को आप सुधार सकते। वही विद्याधर रूपी साप पूरा जिंदगी भर सोचने लगे किस तरीके से मैं जा सकता हूं भगवान का चरण। तो भगवान का स्मरण कर रहे थे इसी तरीके से कोई भी बहाने में मैंने भगवान का स्मरण ऐसा स्मरण करते करते एक दिन देखा कि नंद महाराज गोपीय सब ब्रजवासी को लेकर आए जमुना में नहाने के लिए। आज जमुना में नहाने के लिए जब आ गए तो ये विद्याधर रूपी साप जाकर नंद महाराज को पूरा पकड़ लिए। बहुत मतलब बृहद साप थे, बहुत बड़ा है, बहुत विषधर भी है, मतलब बहुत उसके पास विष वगैरह है। तो उन्होंने नंद महाराज को पकड़ लिए तुरंत। तो जब नंद महाराज को पकड़ के रख दिए तो नंद महाराज रोना चालू किए और नंद महाराज का रोना को सुनकर ब्रजवासी सब आ गए सामने कहने लगी कि हे कृष्ण आप रक्षा करो। तो किसी तरीके से कृष्ण उधर पहुंच कर आपने पैर के द्वारा उसी विषधर को एकदम पटक दिए दूरा। और भगवान का चरण जब विषधर का मस्तक में आ गए तब विषधर का जीवन उद्धार हो गए, फिर उन्हें पुनर्जीवन प्राप्त हुए और विद्या का रूप प्राप्त हो गए। तब भगवान पूछने लगे कि क्या किए थे आपने जिसके लिए आपको सब मिले। विद्याधर कहने लगे कि मैंने एक महान ऋषि मुनिया का चरण में मैंने अपराध की थी जिसके कारण मेरे को इसी रूप प्राप्त। तब भगवान ने उसको उद्धार किया। इसका कहानी का मतलब भक्तिचंद्र सरस्वती ठाकुर इसका वर्णन कर रहे कि इसका अर्थ होता है कोई कभी भी कोई साधु संत महात्मा का चरण में अपराध नहीं करना। भले ही अगर आपने कुछ कर नहीं पाओगे उसको लेकिन उसको कभी क्रोधित नहीं करना। जाड़े देखो तारे कहो कृष्ण बोलते साधु संत महात्मा पर कर्तव्य होता है कि हर जगह में जाकर भगवान का उपयोग करता है। जैसे आज देखिए इतने सारे श्रद्धालु भक्तों, पूरा महाराष्ट्र आज बंद है। पूरा मैं बता देता हूँ कि आज बालठाकरे का अंत्येष्टि हो रहा है। एक बालठाकरे के ऊपर सबको पता होगा कि राधा राष्ट्रीय मंदिर को रक्षा करने के लिए बालठाकरे इतने प्रयास किए थे, इस तरीका से उन्होंने की 1970 में जब मंदिर तोड़ने के लिए आए थे सरकार का तरफ से, तो बालठाकरे ने एक फोन के द्वारा उसी राधा राजवाड़ी मंदिर को रक्षा कर दिया। अपना आत्मजीवन में लिखा है He is not a बालठाकरे, He is a बाल ठाकुर। ठाकुर का अर्थ होता है Those who are very close with the Supreme Lord। इसके लिए प्रभुपाद जी अपना आत्मजीवनी में इसका वर्णन किया, He is not a बालठाकरे। ठाकुर का अर्थ होता है मराठी में, कि मैंने किताब में भी पढ़ा था ये, कि ठाकुर मतलब जो मतलब तुम सिंह का माफी उसका आवाज रहते हैं, जिसके लिए देखिए जो शिवसेना पार्टी है ना उसका सिंबल रहते हैं ऐसा ऐसा बात का। तो श्री गोपाल जी लिखा है उसमें ही इज नॉट ए बालठाकरे, ही इज ए ठाकुर। ठाकुर मीन्स ही इज वेरी क्लोज विद द सुप्रीम लॉर्ड। जिसके लिए उन्होंने भगवान के लिए कुछ भी किए, भले भी भौतिकवादी व्यक्ति भौतिक आसक्ति रहते थे, बहुत कुछ किए उन्होंने, लेकिन फिर भी भगवान के लिए थोड़ा ना थोड़ा कुछ काम उन्होंने किए, धार्मिक कार्यकलाप में उन्होंने कुछ ना कुछ भाग लिया। जिसके कारण श्री गोपाल जी अक्टूबर तिथि में उनका भी इसी धराधाम से छूट गया। स्वयं श्री गोपाल ने उनको ग्लोरीफाई की हर जगह, बहुत सारे जगह उन्होंने लिखा है He is not a बाल ठाकुर है, He is a बाल ठाकुर है। ठाकुर का अर्थ होता है जो कि भगवान के साथ एकदम संबंध युक्त है। इसके लिए आज का दिन उनका अंत्येष्टि हो रहा है, जिनका घर में टीवी है तो जाकर देख सकते हैं कि शिवाजी पार्क में एक हरे कृष्ण मंदिर भक्तों के लिए एक ही बहुत ही सुंदर एक स्टेज बना है। आज उसी स्टेज में बैठकर ये हरे कृष्ण भक्त राधा राजवाड़ी मंदिर से बहुत सारे मंदिर थे भक्त लोग आकर उसी जगह में सुबह 7 बजे से लगातार उनका कीर्तन चल रहा है। भगवान का कृपा है जिसके लिए वो मरने के बाद भी देखिए कितने लाखों करोड़ पब्लिक उनको से मिलने के लिए, उनको देखने के लिए सेवा है, क्योंकि उन्होंने थोड़ा समय के लिए भगवान के लिए कुछ किया। अरे भी भौतिकवादी व्यक्ति है, लेकिन भगवान का को उनका प्रेम प्रीति भगवान का उनको प्यार था, जिसके लिए उन्होंने मरने के बाद भी इतने लाखों पब्लिक आ रहे हैं देखने के लिए। तो मतलब भगवान के साथ अगर जिसका संबंध रहते हैं भगवान उसको हर तरीके से रक्षा करते हैं। तो कार्तिक महीना एक महान महीना है जिसमें भगवान ने बहुत सारे लीला को प्रकट किया। राधा रानी के सबसे प्रिय महीना है कार्तिक महीना। श्री चैतन्य महाप्रभु इसी कार्तिक महीना का ऊपर वर्णन की कि कार्तिक महीना जब भी आ जाता है सामने मेरा मन में यार कुछ भी नहीं रहता है। इसके लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य ग्रंथ में वर्णन की है कि कार्तिक महीना का मठ अर्थ होता है होरी भजन का महीना। होरी कथा कह होरी गुण गाओ होरी नामे सदा मन करो, होरी भजन का महीना होता है। भक्तिविनोद ठाकुर स्वयं इस कार्तिक महीना में एक ही जगह में बैठकर भजन की एक महीना है, कहा इधर उधर नहीं घूमेंगे। भक्तिविनोद ठाकुर जिन्होंने कभी ब्रजमंडल कोई कवर नहीं की, जिनको पता नहीं होगा शास्त्र कवर देख लीजिए, कोई कोई कथाकार कहते थे कि भक्तिविनोद ठाकुर ने ब्रज धाम परिक्रमा की, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर कभी भी 84 कोस परिक्रमा की, कोई भी शास्त्र में इसका वर्णन नहीं है। जो शास्त्र में अगर कुछ लिख भी दिए हो मतलब उस मतलब ये सही बात है। भक्तिविनोद ठाकुर अपना आत्म जीवन चरित्र में इसका वर्णन किए कि मेरा लिए ये कार्तिक महीना जो है होरी भजन का समय है, जिसके लिए भक्तिविनोद ठाकुर कभी भी 84 कोस परिक्रमा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जीवन में एक ही बार से 84 कोष पढ़ कर वीडियो नहीं जानने के लिए तैयार नहीं था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का परम प्रिय शिष्य थे जिन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को लेकर गए थे 84 कोष पढ़ कर। भक्तिवीर ठाकुर कहां पर भी नहीं लिखे कि मैंने 84 कोष पढ़ कर मार दिया, लेकिन तथा को भी कुछ कथा का आजकल कहने लगे कि भक्तिवीर ठाकुर 84 कोष पढ़ कर मार दिया। कोई भी शास्त्र में इसका वर्णन नहीं, कोई भी शास्त्र इसका प्रूफ भी नहीं, क्योंकि भक्तिवीर ठाकुर का मन में हर समय ये कार्तिक महीने का विचार था कि कार्तिक महीना मतलब एक जगह में बैठकर मेरे को भगवान का निश्चित रूप से भगवान का स्मरण करना, अधिक से अधिक समय भक्तिवीर ठाकुर ऐशानंद सुखदा कुंज जहां पे बैठकर भक्तिवीर ठाकुर पूरा कार्तिक महीना अपना जीवन ठाकुर का आत्मजीवन चरित में इसका वर्णन दिए कि भक्तिवीर ठाकुर स्वयं इस कार्तिक महीना में ऐशानंद सुखदा कुंज में बैठकर हर समय उन्होंने हरि भजन किए थे और जितने प्रार्थना संगीत भक्तिवीर ठाकुर ने लिख दिए मतलब 700 से अधिक भक्तिवीर ठाकुर का भजन है और उसमें से करीब 70 के ऊपर प्रार्थना संगीत है। जिस प्रार्थना संगीत को भक्तिवीर ठाकुर इसी कार्तिक महीने में शानंद सुखोदा कुंज में बैठकर उन्होंने लिखे थे जिसको कहते हैं धाला लगी। एक भजन उन्होंने लिखे कि बड़ो सुखे खबर दाय, बहुत ही सुंदर भजन है इसका जो कि भक्तिवीर ठाकुर एक कार्तिक महीने का बीड़ी गोवर्धन का पूजा का दिन उन्होंने ये शानंद सुखोदा कुंज में बैठकर इसी भजन को लिख दिया बड़ो सुखे खबर दाय। मेरे लिए कोई एक बार उनको पूछा था कि आपको एक 84 कोष में आना चाहिए, बोलते मेरे लिए मेरा 84 कोष जो है मेरा भजन है, इस भजन के द्वारा ही मैंने 84 कोष को मैंने परिक्रमा कर। तो गोपाल जी कहते हैं कि जिनका अगर संभव नहीं होता है 84 कोष परिक्रमा करने का, अगर कोई व्यक्ति अगर इसी कार्तिक महीने में बैठकर सुबह से रात तक अगर भक्तिवीर ठाकुर का भजन को चर्चा करे और 84 कोष में जितना फल मिलता है उससे अधिक से अधिक फल मिलता है भक्तिवीर ठाकुर का भजन। जिनका अगर क्षमता नहीं है शारीरिक क्षमता नहीं होता, प्रभु जी कह रहे कि जिनका शारीरिक क्षमता नहीं होता जाने का 84 कोष में का मौका नहीं, 84 कोष में मामूली बात नहीं है 84, लेकिन उनका मन में विचार आया कि मेरे को 84 कोष मैंने कभी अपना भक्ति जीवन में मैंने कर नहीं पाया, मेरा अपना भक्ति जीवन में मैंने कभी गोवर्धन परिक्रमा कर नहीं पाया, मतलब मेरा हाल क्या होगा, राधा रानी मेरे को कृपा नहीं करेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं जिनको मन में ये भावना प्रकटित हो गए कि मेरा जीवन बीत गए लेकिन मैंने आज तक कभी 84 कोष नहीं किया हूँ, मैं आज तक कभी गोवर्धन परिक्रमा नहीं किया हूँ, तो मतलब मेरा भक्ति एकदम गए सत्यनाथ। उनके लिए भक्तिवीर ठाकुर का भजन जो कि कार्तिक महीने में अगर कोई भी जिन्होंने 84 कोष परिक्रमा कर नहीं पाते हैं घर में बैठे मंदिर में भी आने का कोई जरूरी नहीं, घर में बैठकर अगर सुबह शाम भक्तिवीर ठाकुर का प्रार्थना संगीत को चर्चा करे बैठकर जो कि 84 कोष से अधिक पद मिलने वाला है। भक्तिवीर ठाकुर इस प्रार्थना संगीत के द्वारा আপনি 84 কোষ কবি কি आपने इसी महीने में घर में बैठकर अगर शरणागति कीर्तन का आपने चर्चा की घर में कोई नहीं है साथ में आप अकेले हो घर में, भले ही अगर कोई नहीं रहता तो आपका मन में रहता है कि कोई नहीं है तो मैं किसको सुनाऊं ये भजन, भक्तिवीर ठाकुर ने भजन भगवान का प्रसन्नता के लिए दिया। अगर कोई भी घर में नहीं है आप अकेले बैठे हो घर में, लेकिन अगर आपने ये भजन को चालू किए कि दोइनो आत्म निवेदन व्रतित्य वरण अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालन। कांदिया कांदिया बोले आमी तो अधम शिखाए शरणागति करहु उत्तम। तो देखिए ये भजन के द्वारा भगवान स्वयं आपका सामने खड़ा होकर आपको हाथ पकड़ के भगवान आपको बिल्कुल तो धाम कर लेकर जाएंगे। ये भजन अगर आपको बस समय नहीं है कार्तिक महीने में जाने का इधर उधर ब्रजमंडल कर नहीं पाते आप, थोड़ा समय को निकाल कर घर में बैठकर अगर अपने भक्ति में ठाकुर किसी भजन का अगर अपने चल सकते तो कार्तिक महीने का जो फल वो घर में बैठकर स्वयं प्रभुपाद जी अपना आत्मजीवनी लाइफ ऑफ प्रभुपाद को ग्रंथ जिसमें उन्होंने पढ़ा। आज सुबह भक्ति के स्मरण जी बता रहे थे कि भक्ति के स्मरण और प्रभुपाद जी के जो कन्वर्सेशन उसमें भी देखिए गीतावाद निकले उसमें लास्ट में भी इसका वर्णन किया है रिगार्डिंग कार्तिक महात्म्य। कभी कभी भक्त का मन में ये विचार आ जाते हैं मैंने इतना साल तक प्रभु जी मेरे मंदिर में हूँ लेकिन आज तक मैंने ब्रज धाम पर परिक्रमा नहीं किया, आज तक मैंने 84 कोस मैंने नहीं किया, आज तक मैंने गोवर्धन परिक्रमा नहीं किया, आज तक मैंने एक ये नहीं किया वो नहीं किया। प्रभु जी कहते नो नीड टू गो इन योर डांस। अगर इफ यू वांट टू टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम श्रीमती राधारानी यू शुड डिसाइड अबाउट द भक्तों ठाकुर का। अगर आपको राधारानी का कृपा आपको मिलना चाहिए तो घर में बैठकर आप भक्तिमय ठाकुर के भजन को आप चर्चा करें, जिसके लिए भक्तिमय ठाकुर ने इतने सारे भजन को रचना किया। भागवत जिसको पढ़ना नहीं आता है संस्कृत श्लोक है पढ़ने में बड़ा कठिन लगता है, कठिन कठिन शब्द है उसमें पूरा भागवतों का जो 18,000 श्लोक है पूरा 18,000 श्लोक को भक्तिनाथ ठाकुर ने सिर्फ 700 भजन के द्वारा पूरा भागवत उन्होंने कंप्लीट कर दिया। जैसे हम लोग सभी पढ़ते हैं शिक्षा स्टकम उसके ऊपर भक्तिनाथ ठाकुर ने भजन लिखे प्रभु तब पद जुगे मोनो निवेदन। अगर शिक्षा स्टकम लगता है कि चेत दर्पण मार्जनम भव महादेव निर्वम बड़ा कठिन शब्द है पढ़ने में बात आपको रियलाइज नहीं होता है प्रभु जी सब लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं शिक्षा स्टकम। मैंने एक दिन उसको बताया था कि आपने इतना नया नया आपने जैन किए लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आप पाठ करते रहते हैं शिक्षा स्टकम मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि प्रेम होना चाहिए। तो ये चेत दर्पण पाठ्य में लगते कठिन 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 शब्द लगता है शब्द पढ़ाई लिखाई वाले नहीं होता है ना। बहुत से भक्त है जिनके मन में भगवान का बहुत प्रेम है लेकिन अनपोड़ है जिंदगी कम स्कूल तक पहुंचने के लिए ऐसा बहुत सारे भक्त मैंने बहुत सारे भक्त को मैं पहचानता हूँ जो कि जिंदगी कभी कभी भी स्कूल तक नहीं पहुंचे। महापुर के भक्त मैं जो आज भी मैं उनको श्रद्धा करता रहता हूँ जो कि जिंदगी में कभी भी स्कूल तक नहीं गया किसी उनको पढ़े नहीं होता है लेकिन सिर्फ सुनकर सुनकर आज का दिन में भागवतों को अध्ययन चलते पहले वो सब सुनते रहते थे कोई भी किसी का क्लास होता था एक दिन सामने बैठकर सुनना चालू करते थे। 25 साल मतलब मेरे से एक साल का जूनियर है फिर भी उन्होंने जब भी कुछ क्लास होता था तो सामने बैठकर सुनते रहते आज सुनते सुनते उनका इतना मतलब भगवान ने उनको इतना कृपा दी कि अभी उनके पास कोई भी किताब लेकिन उनको पढ़ाई लिखी है नहीं जिंदगी में उन्होंने स्कूल तक भी नहीं गए। तो इसी तरीके से श्रवण के द्वारा उन्होंने इतना ज्ञान को प्राप्त कर लिए कि आज का दिन में और भागवत क्लास देते हैं मंदिर में। लास्ट टाइम मैंने मायर को गया था पिछले महीने में तो मैंने उनको अनुरोध किया कि प्रभु जी आपका मुख से मैं भागवत कथा सुनना चाहता हूँ बताया मेरे घर में आ जाओ मैं आपको सुना देता हूँ बोला नहीं मंदिर में बैठ के मेरे को सुनना है सबका सामने बता ठीक है तो मैं एक दिन भागवत क्लास देता हूँ। तो मैंने टेंपल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की कि भैया उनको क्लास दो मतलब वो जी इतने सारे भक्त हैं उनके सामने वो कैसे क्लास दे सकते हैं मैं बोला आप दे दो ना तो बाद में मैंने बात सुन लिए थे तो उनको क्लास दी तो इतने अच्छे उन्होंने बताया तो मैं तब से सोच रहा था कि देखो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं किए उन्होंने 8 साल उम्र में आ गए थे इस पर जिंदगी में कभी स्कूल तक नहीं गए लेकिन हर क्लास को सुनते रहते सुनते सुनते इतना उनको मतलब ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिए ये आज सबका सामने बैठकर बता दे, ये है सोवन का मार्ग। फिर कार्तिक महीने में अधिक से अधिक समय भगवान का कथा को सुन। आज के दिन में तो जाप का एक फैशन होगा कि जाप का निकालते रहते हैं, लेकिन जाप में जाकर टाइम पास नहीं करने का, जिस जगह में कोई जाते उसी का स्थान का महत्व सोवन। अपने जानता में गए उसी जगह को दर्शन कर ले, लेकिन उसी जानता का बारे आपका कोई जानकारी है नहीं। बहुत सारे भक्तों को मैंने देखा हूं जिन्होंने मतलब एक साथ हम लोग गए थे एक चक्र में, एक चक्र का नाम उन्होंने जिंदगी में कभी सुना ही नहीं। एक चक्र जो है स्वयं नित्यानंदों का जन्म स्थान, और उसी जगह में जाकर अगर उसी जन्म का महत्व का आपने सुना नहीं तो चक्र जाने का कुछ फायदा नहीं। इसके लिए श्री गोपाल जी कहते हैं कि जाता मतलब अधिक से अधिक आपको शोभन करना चाहिए। अगर आपने सिर्फ टाइम पास करने के लिए जाता में गए, नो नीड टू गो एनीवेयर, आपको जाने का कोई जरूरत नहीं है। आप घर में बैठकर आपका भजन साधन करो अच्छे से। जाता मतलब उसी जगह में जाकर स्थान का महत्व को शोभन करना। आपने नवी शरण में पूछ गए, सबको बता दिया, अरे प्रभु जी मैंने नवी शरण में घूम कर आया है। अगर नवी शरण का महत्व क्या है उन्होंने अगर सुना नहीं कभी, व्हाट इज द यूज, जाने से क्या फायदा क्या होता है। इसके लिए प्रभुपाद जी कहते अगर आपको यात्रा में सही जाना है तो यात्रा में जाकर जिस स्थान को आप दर्शन कर रहे हो, जैसा कि बिछोड़ बोल के जगह है जहां में लव कुश का जन्म स्थान है, तो आपने पिछड़ में कहीं कोई आपको बता दी कि लव कुश का जन्म स्थान है, अरे लव कुश का जन्म स्थान है तो उसी जगह का महत्व को स्मरण करना चाहिए। तो जगह को अगर महत्व को जानकारी नहीं है तो जाता में जाने से कुछ फायदा नहीं है, फैशन नहीं करना चाहिए जाता को। लेकिन आज का दिन में फैशन हो गया, फैशन देश में, लेकिन इस कार्तिक महीने में वो फैशन को ऊपर चर्चा नहीं होना चाहिए, सिर्फ भगवान का गुणों कीर्तन को बढ़कर चर्चा होना चाहिए। क्योंकि कार्तिक महीना भगवान का सबसे अधिक प्रिय महीना है, जिस महीने में भगवान अधिक से अधिक लीला को प्रकट कीजिए। भगवान आपने के लिए लीला नहीं की, भगवान ने गोवर्धन लीला प्रकट की थी आपके लिए नहीं की। भगवान इस बद्ध जीव को सिखाने के लिए भगवान ने लीला प्रकट की, भगवान जिनको स्वतंत्रता दे दी मतलब पूरा शादी होकर दे, बोले तुमको जो भी कुछ करने करो। भगवान जिनको स्वतंत्रता दे दी कि आपको जो भी कुछ करने आप कर सकते हो, लेकिन भगवान अंतिम में क्या बताए, सर्व धर्मान परित्यज जन मां में कौन शरण, सब धर्मों को परित्यज जन परित्यज करके मां एकम शरण बजे मेरा चरण में आकर शरण। अगर आपने मेरा चरण में आकर समर्पित हो गए तो आपने जितने सारे आपने पाप कर्म किए सब पाप से मैंने आपको रक्षा कर दूंगा, इट्स माय गारंटी। तो देखिए भगवान आपके लिए गारंटर बन जाते हैं। आज का दिन में अगर आपने कुछ फ्लैट खरीद करते हो तो पहले उसके लिए आपको एक मीडिया होना चाहिए, आप डायरेक्ट जाके मीडिया से फ्लैट नहीं खरीद पाते। सीधा जाकर अगर आपके पास पैसा भी है तो बिल्डर के साथ बातचीत नहीं कर पाओगे, एक मीडिया होना चाहिए साथ। जिसके लिए आप देखिए कोई भी ओली गली में एक से एक दुकान है, रियल एस्टेट एजेंट बोलते हैं, रियल एस्टेट एजेंट। तो इसी एजेंट का माध्यम से आपको कुछ करना है। तो भक्ति मतलब भगवान का अवर पूर्ण शरणागत होना चाहिए, जिसको कहते हैं भक्ति। अवश्य रखी दे कृष्णा विश्वास भगवान का ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। शरण को शरणागति होइबे जहां तहार प्रार्थना सुने सिमंत कुमार। भगवान का ऊपर अगर कोई पूर्ण शरणागत हो जाते हैं तो भगवान उसको हाथ तरीका से रक्षा कर देते हैं। भक्त नाम ओमजन भक्तों को रक्षा करने के लिए भगवान हर युग में आपने प्रकट होते हैं। कार्तिक महीने में भगवान अधिक से अधिक लीला को प्रकट करते हैं। इसके लिए भगवान का सबसे अधिक प्रिय मायना है कार्तिक मायना। ये कार्तिक मायना में भगवान ने लीला की थी आपने के लिए नहीं की। ये हमारा नाम बद्ध जी को उद्धार करने के लिए इसे लीला के द्वारा श्रवण करके व्यक्ति भगवान के ऊपर पूर्ण शरणागत हो सकता है। जिसके लिए शास्त्र में बताया कि सिंह नाम सकत कृष्ण पूर्ण श्रवण करता है तो भगवान का चरण में आपको तो समर्पित करने का कार्य होता है कि भगवान का लीला को श्रवण। नर्तन दास ठाकुर जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को जन्म स्थान दर्शन करने के लिए जो पहली बार उन्हें पहुंच गए थे मायापुर धाम में, उनको कुछ पता नहीं था कि महाप्रभु का जन्म स्थान कहां पे है। गंगा का तट में जब उन्होंने आए एक ज्येष्ठ व्यक्ति को उन्होंने मिले जिसका बहुत उम्र हो गई, उनका देखकर नर्तन दास ठाकुर ने उनको दंडवत प्रणाम की। उनको पता नहीं था कि कौन है। जी कहते इसको कि जोहोरी जोहोर चेने एक बंगाली कोटेशन है इसका। श्री गोपा जी के बहुत सारे प्रवचन में ये कोटेशन गोपा जी यूज किए। जोहोरी जोहोर चेने सोने चेने कोचू, मतलब जोहोरी मतलब जो कि सोने का काम करने वाला। उनको पता होता है कि कौन असली सोना है कौन नकली सोना। जय श्री राधा कृष्ण जी भगवान की। जोहोरी जोहोर चेने सोने चेने कोचू मतलब जो जोहोरी होता है उसको पता होता है कि कौन असली सोना है कौन नकली है। और सुअर मतलब सुअर जो होता है जो मतलब कुछ वगैरह एक फल होता है जो खाते रहते हैं हर जंगल में रहते हैं गंदी हुई खाना उनको पसंद है। सुअर का सामने जाकर अपने अच्छा खाना दे दिए देखिए वो खाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आपकी गंदी हुई खाना दे दी लेकिन टकाटक खा लेते। इसके लिए गोबर जी कहते हैं जोहोरी जोहोर चेने सुअर चेने कुछ। तो नर्तन दास ठाकुर जो गंगा के तट में आ गए एक वृद्ध व्यक्ति को दर्शन मिले पहले। तो दर्शन करने के बाद नर्तन दास ठाकुर को कहने मतलब धन्यवाद प्रणाम करने के बाद पूछने लगे कि बाबा आप इधर हर दिन आते हो? बताया मैं हर दिन आता हूँ। तो उन्होंने पूछा आप कहाँ से आए हो? अच्छा तो कहते कि मैंने तो आया ब्रजधाम से, मैं आया हूँ, मैं महाप्रभु को महाप्रभु के घर दर्शन करने के लिए मैंने आया। तो वृद्ध व्यक्ति कहने लगे मैं आपको देखकर ही मेरे को पता हो गया कि आपने गौड़ निजे जाना गौड़ायो निजे जानो सहे धर धरी ताहाते लड़ी रे वाड़ो पाछे किछु धरी। चेतन बाबू ग्रंथ में हरिचंद ठाकुर से वर्णन कर रहे। तो जब वृद्ध व्यक्ति को मिला नर्तन दास ठाकुर ने पूछने लगे कि बाबा आप रेगुलर इधर आते हो हर दिन इसमें आते हो गंगा का तट में? तो कहने लगे मैंने रेगुलर आता हूँ इसी जगह में हर दिन मेरे को आना पड़ता है। तो नर्तन दास ठाकुर पूछने लगे आप क्यों आते हो हर दिन? बोलते मैंने इसी जगह में मैंने देखा मेरा प्रिय जन निमाय कितने सारे लीला को प्रकट की थी इसी जगह में। मैं हर दिन इधर आकर बैठता रहता हूँ और उसी लीला को मैं स्मरण करता रहता। तब वृद्ध व्यक्ति नर्तन दास ठाकुर को बताया कि इसी जगह का नाम है नील दया। नील दया का अर्थ होता है इनमें से बहुत सारे भक्त है जिन्होंने नवद्वीप धाम परिक्रमा की उनको जरूर पता होगा नील दया का। तो नील दया का अर्थ होता है दयाहीन मतलब मर्सीलेस। क्यों इसका नाम हो गया नील दया? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेने का पहला दिन सबको पता हो गए स्वयं विष्णुप्रिया देवी सची माता सबको पता है कि महाप्रभु संन्यास लेने के लिए घर छोड़ रहे हैं। विष्णुप्रिया देवी के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु का अंतिम कथोकथन में बताया वासुदेव ठाकुर ने कि सुनो सुनो प्राणनाथ ये बगल कथा है मैं ब्रश करते हुए इसको विशेष करने के लिए सुनो सुनो प्राणनाथ मोर शिर दिए हाथ शरणा से लोई दे। महाप्रभु का सामने धर्म संकट आ गया एक तरीके से मेरा परम प्रिय पति इतने कम उम्र थी उनका सामने जाकर मैंने कैसे झूठ बोला? झूठ बोला मेरा स्वभाव नहीं होता। आओ अगर सच्ची बात भी मैं बोल दो सौंड नहीं कर पाती इसको। तो विष्णु के अंदर कहते हैं कि सुनो सुनो प्राणनाथ मोर शिरे दिए हार सन्नास लो बिना दिखा। मैंने तो सुना हो कि आप सन्नास ले रहा हूं, सिर्फ आपको कुछ नहीं करने का, मैंने आपको पूर्ण अनुमति मैं दे रहा हूं, फुल परमिशन है मेरा, आप जा सकते हो। लेकिन आप मेरे सर में हाथ रखकर मेरे मस्तक को पर हाथ रखकर आप मेरे को कह दियो कि आप जा रहे हैं। सुनो सुनो कानो ना मोक्ष के लिए हाँ शौना सुलभ नहीं आता है। तो वहाँ को क्या कहने के लिए उसके सामने जगते जगते के देखो मीठा कोई शब्द लेको शब्द तो एक शब्द भगवान नाम हो तो लो विष्णु प्रिया शार्थ को करो धर्म संकट आ सामने। आपने धर्म पत्नी जिसको कह नहीं पाते कि मैं सन्नास ले रहा हूं छोड़कर मैं जा रहा हूं, वहां को कह रहे कि जगते जगते देखो मीठा कोई सब लेखो सत्य तो है सब भगवान। इस जगत में आप जो भी कुछ देख रहे हो ना सब झूठ है, ये किसी सत्य है वह स्वयं भगवान। और आपका नाम है विष्णु प्रिया, मतलब विष्णु का घर नहीं हुआ, नाम तोड़ विष्णु प्रिया शार्थ को करो भैया। आपका नाम है विष्णु प्रिया, मतलब विष्णु का एकदम अधिक प्रिय हो आपका नाम को सार्थक बना सकता है। मोक्ष वाले ठाकुर जो कि सिद्धियों को अत्यंत प्रिय पार्षद जिसके ऊपर कल दुर्गेश महाराज जी बता रहे थे कि मोक्ष वाले ठाकुर जो कि सिद्धियों महाराज का अत्यंत प्रिय पार्षद है जिन्होंने इसी अवस्था का वर्णन कर रहे शाशुड़ी बोधुर रोदन सुनिया बहुशी करा दी। महाराज कल बता रहे थे कि उन्होंने जब बांग्लादेश गए थे प्रचार के लिए तब उन्होंने इस कहानी बताना चालू की उसी जगह में शाशुड़ी बोधुर रोदन सुनिया शाशुड़ी का अर्थ था सास बोधु मतलब बहु शाशुड़ी बोधुर रोदन मतलब क्रंदन करते रहते रोदन सुनिया बंशी बंशी मतलब ठाकुर एकदम इतना प्रेम पुलकित हो गए कि गोड़ा गोड़ी जाए मतलब जो सामने जो जगह रहते हैं उसमें एकदम प्रेम विचलित हो गए। शाशुड़ी बोधुर रोदन सुनिया बंशी गोड़ा गोड़ी जाए सच्ची बात है तो पता होगा कि मेरा परम प्रिय पुत्र मेरे को छोड़कर जा रहा है। दूसरा दिन सवेरे एकदम ब्राह्म मुहूर्त में सिद्धिदेव महाप्रभु घर छोड़कर चला गए थे निर्दया में और निर्दया से पार पर पहुंच गए थे काटोआ सन्नास लेते आज जब ढूंढते ढूंढते विष्णु की हरी आज सूची माता पहुंच गए उसी जगह में तो खेत करने वाला सबको मिलने चालू की कि आपने मेरे बेटा को देखा क्या। तब सूची माता कहने लगी कि तुम्हारे हृदय बोल के कुछ निर्दया मतलब दयाहीन मतलब तुम्हारे दया बोल के कुछ भी नहीं है जो मेरा परम प्रिय पुत्र इस जगह को छोड़कर जा रहे काटवा आप उठा नहीं पाए मतलब आपका दया बोल के कुछ भी नहीं है इसके लिए जगह का नाम है निर्दया। जिन्होंने नवदीप धाम परिक्रमा की है उनको जरूर पता होगा कि निर्दया में एक दिन भक्त को लेकर जाते हैं निर्दया का दर्शन करने के लिए। तो महाप्रभु ने उसी निर्दया में गंगा पार होकर पहुंच गए थे काटवा में जहां पर जाकर महाप्रभु ने सन्नास किया। तब वही नर्तन दास ठाकुर ये लीला जब सुन ली उनका मुखार बिंद से नर्तन दास ठाकुर एकदम पुलकित हो गया सुनने के बाद कि ये अपना परम प्रिय प्रिय पार्षद और महाप्रभु का घर गृह दर्शन करने गृह दर्शन तब वो आई छे तब वो बारे बारे विष्णु दास ठाकुर इस वर्णन करते गृह दर्शन तब वो आई छे तब वो बारे बारे मतलब महाप्रभु का घर दर्शन कर लिए मैंने इतना प्रयास करके मैंने इसी जगह पर ये नरोत्तम दास ठाकुर जब महाप्रभु का घर दर्शन किए तो उसी समय ईशान ठाकुर जो कि महाप्रभु का अंतरंग सेवक ये तो बहुत उम्र हो गए थे तो ईशान ठाकुर आकर नरोत्तम दास ठाकुर को आशीर्वाद प्राप्त किए मैंने आशीर्वाद प्रदान किए नर्तन दास ठाकुर एकदम आनंदित हो गए सब देख कर ईशान ठाकुर के द्वारा मेरे को आशीर्वाद प्राप्त। तो भगवान इसी तरीके से लीला अपने लीला को प्रकट करती है महाप्रभु इसी धराधाम में आए भक्त रूप लेकर आए। उन्होंने आने का पहले उनका पार्षद बिंदु को उन्होंने प्रकटित करा अलग अलग जगह, जैसा आचार्य ठाकुर को उन्होंने प्रकटित करा दिए शांतिपुर धाम में, निरंजन प्रभु को प्रकटित किए गांव में एक छप्पर धाम में, इसी तरीके से गदाधर पंडित शिवास ठाकुर सबको अलग अलग जगह आज सबको उन्होंने लेकर आए कहां पे लीला स्थली मायापुर धाम। भले बच्चा सीधा जो कि महाप्रभु को अंत न को प्रिय पार्षद जिनके साथ शैशव से वृद्धावस्थ तक महाप्रभु ने लीला विलास की। इतना लीला करने के बाद भी जब महाप्रभु उनको बुलाकर लेकर आए कि जाओ श्रीनिवास जाओ 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 लहो किया करो सीधर आचार, कहने लगे जाओ सीधर को बुलाकर लेकर आओ, तो सीधर को बुलाकर लेकर आए महाप्रभु उनको सौरभुज महाप्रभु ने उनको सौरभुज मूर्ति दिखाया। चाहो किचुआर चाहो किचुआर कोई बारे तबो कि आमार आचार, चेतन भागवत ग्रंथ में वृंदावन दास ठाकुर इसका वर्णन कर रहे हैं। चाहो किचु आर चाहो किचु आर, सीधा आपने कुछ मांगो मांगो तबो कोई तारे ये तो की आवार, चेतन भागवत ग्रंथ में वृंदावन दास ठाकुर इसका वर्णन कर रहे हैं कि सीधा रो सुनो तब मोर वचन तुम्हारे लोई ले आमी होती आगमन आमावाई के कहो तुम्हें चाहो ना किया तुम्हारे विद्या में बड़ी होती बार बार विनम दास्तर को इसको पढ़ा छत में बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बने हैं। तो ये है कार्तिक का महत्व जिस महीने में आपको भगवान की संविदा को सोए, इसके लिए भक्ति में ठाकुर जाते हैं होड़ी कथा कहो होड़ी गुण गाओ होड़ी नाम सदा मत करो और क्या कहे कि जाके देखे तुम्हें भूले जावे होड़ी तारो मुख पानी से, जिनको देखकर आप होड़ी का स्मरण नहीं होता उनको उनको मुख दर्शन नहीं करने के लिए गोपाल जी इस कार्तिक महीने के ऊपर गोपी ठाकुर का ये भजन अधिक से अधिक सुनाने में चर्चा करते। एक तो गोपी गीत गोपाल जी हर समय गाते थे कार्तिक महीने में, कर्म कथा मिलन तत्व जीवन, एक जीवनी में एक लेक्चर में मैंने सुन रहा था कि गोपाल जी सुबह शाम इसी कार्तिक महीने में इसके बाद ना तो गोपा जी इस कार्तिक महीना में जैसे हम लोग हर दिन गाते हैं दामोदर अष्टकम, मैंने कल पढ़ रहा था इस किताब में कि गोपा जी इसी कार्तिक महीने में सुबह शाम ये तबो कथामृतम तप्त जीवनम ये भजन उन्होंने गाते थे हर दिन। ऐसा कार्तिक महीने का ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन गोपा जी ये भजन गाए तबो कथामृतम तप्त जीवनम, जो कि भागवतों का दशम स्कंध में शायद सत्रह श्लोक में इसका पूरा वर्णन किए गोपी गीत इसलिए, लेकिन गोपाल ने उनको शर्त कर दिया। अठारह श्लोक में गोपाल जी नहीं जाए, गोपाल जी ने सिर्फ सात श्लोक कर देते तब वो कथा मृतम तब तो जीवन ये सात श्लोक उसको पैर सुनने हैं जो कि गोपाल जी जाते थे हर दिन। कोई एक शिष्य को पूछा ना कि बाबा जी आपने कार्तिक महीना में ये हर दिन कबो कथा मृतम की बात है, एक जगह में बाबा जी वर्णन की कि एक बार कार्तिक महीने में श्री गोपाल ने मायापुर में जाकर रुका और मायापुर में सत्रह दिन तक रुके थे उनका अपना भजनपुरी में, जो भजनपुरी आज भी है तो एकदम मायापुर गेट का सामने राइट साइड में भजनपुरी है जहाँ पे गोली थे गोपाल जी अपने हाथ में स्थापना की किसी गोली ने भी जिसको कहते थे भजन कुटी, उसी जगह में बैठकर गोपाल जी इसी कार्तिक महीने में सुबह शाम ये तबो कथा मृतम जिसको कहते थे गोली भी उनके परम प्रिय शिष्य। उन्होंने पूछा एक दिन गोपाल जी, गोपाल जी आपने ये कार्तिक महीने में पहले विधि नहीं था इस्कॉन में कि गोपी की पूजा करना। उनको परम शिष्य पूछा कि प्रभुपाद ने आपने ये हार दे दी गोपी की तब की बात है। तो प्रभुपाद जी ने ये भी संदेह बताया कि गोपी गीत का माध्यम से मेरे को राधा रानी तथा गौरंग महाप्रभु मैं काम कर सकता। सिर्फ गोपी गीत गाने से आपको कुछ नहीं करने का। ये कार्तिक महीना है ना, राधा रानी का सबसे अधिक प्रिय महीना, तो राधा रानी का आपको राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए। और इसी गोपी गीत का माध्यम से मैं इसके लिए गोपी गीत गाता हूँ। जब भी मैं गोपी गीत गाना चल कर देता हूँ तब मैं देखते रहते कि राधा रानी और स्वयं महाप्रभु दोनों मेरा सामने उपस्थित हो गए। इसी गोपी गीत का माध्यम से राधा रानी तथा श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा आप इसे कार्तिक महीने में प्राप्त कर सकते। जिसके लिए श्री गोपाल ने हर दिन सुबह शाम एक गोपी गीत गाया। लेकिन इस दामोदर स्वरूप गोपाल कुछ वर्णन नहीं किए, कोई भी दीक्षा नहीं। श्री गोपाल जी एक ही जगह में दामोदर स्वरूप में वर्णन कि ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन संघ में ये दामोदर अष्टकम का माध्यम से हर व्यक्ति को मौका मिलता है ये दीपदान का सेवा। ऐसी दीपदान महात्मा ने वर्णन की है कि नारद पुराण में इसका वर्णन है कि जिन्होंने एक बार इसी कार्तिक महीने में आकर भगवान का सामने दीप के द्वारा भगवान का आरती की, उनका सब नहीं है, उनका 14 पीढ़ी का उद्धार कर सकते हैं एक ही बार अगर भगवान का सामने आकर मिले। पता नहीं हम लोगों ने कितने सारे पाप कर्म किए हैं, लेकिन भगवान इतने कृपालु है। देखो भगवान का देखिए सर्वदानं पड़ता है, माँ में कम शरणं पड़े और मैंने आपको सबको छोड़ दो मेरा शरण में आओ, मैं आपको जितने सारे आपने पाप कर्म किए हो उसी पाप कर्मों को मैं आपको मुक्त कर दूंगा, ये मैं गारंटी आपको देता हूं। इसी दीपदान का माध्यम से आपने जितने सारे पाप कर्म किए, सिर्फ आपने नहीं आपका 14 पीढ़ी तक आपने जितने पाप कर्म किए आपका पितृपुरुषगण मतलब 14 पीढ़ी तक अगर आपका परिवार से कोई भी व्यक्ति आकर अगर भगवान का सामने दीप घुमाए, भगवान का आरती दिखाए, भगवान का दीप प्रदर्शन करे, भगवान का दीप दान में महत्व ले, तो उनका 14 पीढ़ी उद्धार हो सकता है। दीप दान का इतना महत्व है जिसके लिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन संघ एक प्रतिष्ठान है, एक मंदिर नहीं है। ये प्रतिष्ठान का माध्यम से व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करे कि किस तरीके से पाप कार्य से आपने को मुक्त करना। आपने बहुत सारे पाप कर्म किए जाने अनजाने में, लेकिन पाप से आप मुक्त नहीं हो पाते हो। जिसके लिए पाप से मुक्त होने के लिए श्री प्रभुपाद जी ने एक दीप दान कार्यक्रम के दौरान आपको पाप से मुक्त कर देते हैं। भगवान का जो शुद्ध भक्त रहते उनका मन में हर समय का यही विचार रहते हैं, मैं तो कुछ नहीं हूं लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि हर व्यक्ति को भगवान का चरण में आपने को पहुंचा। जिसके लिए भगवान जी एक दीप दान कार्यक्रम, कोई भी संस्था में जाकर देख सकते हैं कि लगातार एक महीने तक दीपदान कार्यक्रम नहीं होता है। भगवान के सामने पुजारी आकर दीप दिखाता है लेकिन जनता को पब्लिक को मिलना नहीं मिलते हैं सब जगह। इसका भी कुछ व्यतिक्रम है जैसे कि जगन्नाथपुरी में कार्तिक महीने में हर दिन जगन्नाथ जी को ये दीपदान का आज भी चालू है। लेकिन ये भी दीपदान पहले से पुजारी घुमाते रहते थे, आज से 50 साल पहले भी से पुजारी घुमाते रहते थे। अगर किसी का इसके ऊपर कुछ भी मतलब प्रश्न आ सकता है कि नहीं 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 ये तो नहीं है, शास्त्र में ऐसा वर्णन भी है, तो गोपाल जी ने डायरेक्ट अपना प्रवचन में वर्णन किया, आई वॉन्ट टू एस्टेब्लिश दिस दीपदान कार्यक्रम इन ईच टेम्पल। मैंने तो स्थापना करना चाहता हूँ कि हर मंदिर में एक दीपदान कार्यक्रम हो कि कोई भी व्यक्ति आकर मंदिर तो सबके लिए है, पखंडी है जिन्होंने पाप कर्म किए वो भी आकर भगवान का दीप जला सकते हैं। और उसी पापी व्यक्ति को उद्धार करने के लिए प्रभुपाद ने ये दीप दान कार्यक्रम पूरा विश्व भर चालू कर दिया। न्यूयॉर्क शहर में इसको दिव्यांग का ऊपर एक बहुत सुंदर प्रभुपाद जी का लीला है, जो कि न्यूयॉर्क शहर में एक मंदिर है जिसका नाम है कि राधा किशोर किशोर, जिस विग्रह का नाम है राधा किशोर की, जिन्होंने न्यूयॉर्क नहीं शिकागो में, तो शिकागो में एक मंदिर है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भवन के क्षमता, जिसका विग्रह के जैसा हमारे इधर है ना राधा गिरधारी, उधर है राधा किशोर किशोर, भगवान दिखेंगे एकदम खूबसूरत एकदम यंग लड़का लड़की जैसा लगता है ना वैसा है, इसके लिए गोपाल जी ने उसका नाम रख दिए थे कि राधा किशोर किशोर। तो गोपाल जी एक कार्तिक महीने में एक बार शिकागो मंदिर में गए, तब उन्होंने ये दीपदान कार्यक्रम चालू मतलब दीपदान करना चालू कर दिया, और जब उन्होंने दीपदान करना चालू की थी कोई आकर कोई विदेशी आकर कहने लगे कि गोपाल जी ये तो एकदम आपका जो ये मूर्तियां है ना, विदेशी लोग कहे भगवान को इतना जानकारी नहीं थे, तो उन्होंने पूछ रहे कि स्वामी जी योर आइडल इज सो नाइस, योर आइडल इज लाइक यू नो यंग चैप्स, मतलब गोपाल जी को कहने लगे स्वामी जी योर आइडल मतलब आपका जो मूर्ति है ना लाइक ऐसे यंग चैप्स मतलब एक युवक युवती लगता है, तो इसको आप इतना उम्र वाले आदमी आपने इतना उम्र वाले स्वामी जी होकर संत होकर आपने भरत से इधर आए आपने बिना इस एक यंग लड़का लड़कों का क्यों आप आरती कर रहे हैं, सोच लीजिए। गोपाल जी को प्रश्न पूछ रहे इसको, गोपाल जी का एक लेक्चर है जिसमें इसको गोपाल जी क्लियर वर्णन किया कि मैंने जब मेरे को जब पूछा क्या ये सरप्राइज, मैंने तो विस्मित हो गया मैं चौंकित हो गया इसको, तो गोपाल जी कहने लगे कि ठीक है मैं आरती कर लेता हूं बाद में मैंने आपका प्रश्न को मैं उत्तर दे। गोपाल जी ने वो राधा किशोर किशोर को आरती की अच्छे तरीके से करने के बाद गोपाल जी थोड़ा बाहर आए और उन्होंने पूछने लगे, मैं उनका नाम में बाकी बदल बात उन्होंने गोपाल जी की सन्ना सुनी थी। तो गोपाल जी आरती करने के बाद गोपाल जी बाहर में आए तो गोपाल जी के फिर वो प्रश्न पूछे, स्वामी जी कैन यू गिव योर आंसर रिगार्डिंग माय क्वेश्चन, मतलब मैंने जो प्रश्न आपको पूछा था उसी प्रश्न का आप उत्तर तो मेरे पास तक नहीं दी। तो गोपाल जी बोला वेट फॉर सम टाइम, आपने थोड़ा समय अपेक्षा की, वेट किया उन्होंने, बाद में गोपाल ने जाकर अंदर से एक दिया लेकर आया जैसे हमारे इधर भक्ति लोग दिया दिखाते हैं ना, तो उसी तरीके से गोपाल जी वो दिया लेकर आए, दो दिया लेकर क्योंकि दो व्यक्ति आए साथ में, तो उन्होंने दे दिए गोपाल बोलते डू आरती बोलते आप आरती करो, उन्होंने बताया कि आई डोंट नो हाउ टू परफॉर्म दैट, मेरे को पता नहीं है किस तरीके से इसका आरती करना है। तो बाद में गोपाल जी ने बताया जिस तरीके से सब भक्त लोग कर रहे हैं जस्ट फॉलो देम, माने आपने जो भक्त लोग कर रहे हैं ना उसी तरीके से आप भी घुमाते रहो। तो उन्होंने घुमाना चालू किए दोनों भक्त ने, तो दोनों भक्त जब घुमाना चालू किए कि देखा उनका इतना आनंद आ रहा है कि भगवान को ऐसे घुमाते 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 रहना चालू कर दिए, सब भक्त लोग खत्म हो गया दीप बंद हो गया एकदम फिर भी वो घुमा रहे हैं। तो गोपाल जी उनके सामने पहुंच गए, आपको ये पसंद है आप सुखी हो, बोलते स्वामी जी आपने मेरे को क्या सिखाया, ऐसा दीप घुमाने से मेरे को क्या आनंद मिला जो मैंने जिंदगी में अभी तक कभी नहीं मिला है। गोपाल जी बोलते दैट इज कॉल्ड द रियल डिवोशन, इसको बोलते हैं भक्ति, आपने किसी को देखा देखकर आपने आरती की मतलब आपका भक्ति था बोलते आपने आरती की, इसी भक्ति के द्वारा आपने आनंद को प्राप्त कर सकते हो, जिसके लिए कहते कि आनंदम बुद्धि वर्धनम, आनंद को प्राप्त कर सकते हो भक्ति के द्वारा। तो आपने ये भक्ति के द्वारा अपने राधा किशोर किशोरी का अपने आरती की जिसके लिए आपको इतना आनंद मिला, उनका आरती हो गए बाद में गोपाल जी को अपना कमरा में लेकर आ गए, लेकर आकर पूछने लगे आई थिंक यू गॉट योर आंसर, मेरे को लगता है कि आपका जो प्रश्न था वो उत्तर आपको मिल गया।
उन्होंने बताया रियली स्वामी जी वी आर सरप्राइज दे रियली वी आर गेटिंग द नाइस हैप्पीनेस इन आवर लाइफ इफ यू परफॉर्म लाइक दिस. उन्होंने बताया कि स्वामी जी मेरा मन में जो प्रश्न था ये आपने क्यों ऐसा आरती कर रहे हो, मैं अभी देखा आरती करने के बाद जो आनंद मेरे को मिला तो आपको स्वामी जी होकर आपको कितना आनंद मिल सकता है. That is true. And if you want to take the real happiness of your life, you can do also like this. अगर आपको भी इसी तरीके से सुखी बनना है, तो भगवान को इसी तरीके से आप भी आरती याद कर सकते. दूसरा दिन से उन्होंने आ गए मंदिर में आना जाना चालू कर दिया. बाद में गोपाल जी से दीक्षा ली एवं दीक्षा लेने के बाद अंतिम में गोपाल जी को सन्नाथ दीक्षा दी जिनका नाम है हृदयानंद गोस्वामी क्योंकि गोपाल जी इसी तरीके से भक्त बनाए. ज्यादा उन्होंने फिलोसफी नहीं बताया कोई भी जगह में जाकर. आज का दिन में तो ऐसा होगा कि पब्लिक जगह मिल गया मेरे को, अरे मेरे को कितना अच्छा लगता है दो तीन घंटा लगातार बोलते रहो. गोपाल जी का लेक्चर अधिक से अधिक समय मैक्सिमम 30-40 मिनट उससे ज्यादा नहीं. कोई भी लेक्चर 700 इंग्लिश लेक्चर 700 इंग्लिश लेक्चर है और 38 हिंदी लेक्चर है, 6 बंगाली लेक्चर है. तो इसमें से कोई भी एक लेक्चर कोई भी बोल नहीं पाएंगे कि गोपाल जी के कोई भी लेक्चर 45 मिनट को बोले मैक्सिमम इंक्लूडिंग जय राधा माधव. और आज का दिन में हम लोग तो किसी को अगर दिखाने के लिए अच्छे तरीके से मतलब उनको लेकर आने के लिए ए जंपो ए सियानो पियानो ए टू जेड म्यूजिक देखो मतलब ए टू जेड म्यूजिक लेकर आते हैं. गोपाल जी सिर्फ एक करतार के द्वारा पूरा दुनिया को पूरा विश्व को हिलाए. सिर्फ एक करतार के द्वारा हरे कृष्ण मंत्र गाए और देखिए सब लोग खुश होकर क्या कहने लगे. जज हैरिसन का भाभी की इतना महान जो उसी जमाने में टॉप पॉप सिंगर इन द वर्ल्ड उन्होंने जब ये पढ़ता के द्वारा गोपाल जी का ये सुन लिए थे हरे कृष्णा धुन को उन्होंने इतना अपने को प्रभावित हो गए. तब बाद में उन्होंने बहुत उसी समय तो सीडी का जमाना नहीं हुआ उसी समय कैसेट मिलता था छोटा छोटा ऐसा लंबा लंबा कैसेट तो उन्होंने बहुत बता दिया लेकिन मिला नहीं. तो बाद में एक दिन जॉर्ज हैरिसन ने कोई एक प्रोग्राम में गए जाकर देखा कि उसमें मिलने के लिए दो भक्त पहुंच गए थे. तो दूर से उन्होंने देख लिया कि दो देखो हरे कृष्ण वाले भक्त है तो उन्होंने बुला लिया कि वो दोनों को बुलाओ सामने स्टेज पर लेकर आओ. तो स्टेज पर लेकर आए तो दोनों एकदम आश्चर्यित हो गए. जज हैरिसन जो कि इतना महान टॉप पॉप सिंगर इन द वर्ल्ड पूरा विश्व में उनका बाद भी कोई पॉप सिंगर नहीं उसी जमाना. जब वो दोनों आ गए सामने जज हैरिसन ने पहले प्रश्न पूछा I like to buy that cassette that is Hare Krishna dhun. तो बाद में उनको हरे कृष्ण धुन को कैसे मिल गया. तो शुद्ध भक्त का मन से जो भी कुछ निकालते हैं मुखार और बिंद से जो भी कुछ निकालते हैं एवरीथिंग इज गुड. तो गोपति एक महान भक्त जिनके मुखार और बिंद से जो भी कुछ निकालते हैं. देखिए उन्होंने अमेरिका में जाकर इस दीपदान किसी को पता नहीं था व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द दीपदान. इसी दीपदान का महत्व से दीपदान के द्वारा दीपदान का कार्य के द्वारा उन्हें कितने सारे भक्त बनाए. और इसके लिए गोपाल ये दीपदान कार्यक्रम को इस बार में चालना किए कि पूरा हर व्यक्ति आकर इसी दीपदान में भगवान के सामने दीप दिखाए और अपना जीवन को सुधार सके. क्योंकि पाप कर्म तो हम लोग हर दिन करते हैं. ऐसा कोई दिन नहीं है जो व्यक्ति हम लोग पाप कर्म नहीं है. क्योंकि आपका बिजनेस हॉल में हो कि कहां पे भी हो तो उसी प्रकार पापी व्यक्ति को सुधारने के लिए इसलिए गोपाल ने पूरा विश्व में ये दीपदान कार्य को चलाया. नहीं तो आपने गौरी मठ कोई भी एक संस्था में जाकर देखी तो आकाश को नहीं बोलता है भगवान ने मतलब आकाश को दिया दिखाना पड़ता है एक महीना तक हुआ जैसा पावर साइड में जाकर देखिए
कोई टॉप फ्लोर रहता है ना, उसका ऊपर एक रेड लैंप जलता है, क्यों जलता है, उसको प्लेन को निशाना होता है इसमें बिल्डिंग है, नहीं तो कभी भी तोड़ता है। तो पवाई साइड हड्डू साइड में जिसका कुछ मकान है ना, तो छह माला सात माला का कुछ बिल्डिंग हो उसमें तो छह माला का ऊपर परमिशन है ही नहीं, तो छह माला का बिल्डिंग का ऊपर कोई भी बिल्डिंग है पवाई भंडू घट्टोपाड़ी सब साइड में, तो ऊपर में एक बल्ब जलता है रेड कलर का, नहीं तो रेड नहीं तो ब्लू ग्रीन ऐसे अलग अलग कलर का सब बल्ब जलता है हर बिल्डिंग में देख लीजिए। तो मतलब होता है कि वो जो पाइलट रहता है उसको इंडिकेट करते हैं ये कि ये लाइट मतलब ये तब इसका बिल्डिंग है, नहीं तो कभी तोड़ता देखते मतलब उतरने वाले है उसी समय नीचे आना पड़ता है, इसके लिए दिखाना पड़ता है पाइलट, तो कोई भी पाइलट मतलब घंटों पर घंटों में सब साइड। तो ये दीपदान मतलब एक इंडिकेशन रहता है, विशेष रूप से जिन्होंने बहुत सारे पाप कर्म किए हैं उसी पापी व्यक्ति को भगवान ने कृपा करके इसी दीपदान का माध्यम से पापी व्यक्ति को सुधार दिया। पापी तापी जब तो छिलो होली नाम में उद्धारी लो तारो साक्षी जगाया, जैसे कि होली नाम के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु पापी व्यक्ति को उद्धार दिए। श्री चैतन्य महाप्रभु का जमाना में एक तो पापी व्यक्ति था ज्यादा नहीं था, जो कि जो होली नाम करने वाला व्यक्ति को हर समय परेशान करते थे। अभी तो श्री चैतन्य महाप्रभु से 525 साल आगे है हम लोग, तो इसी जमाना में एक से एक जगाई माधाई खड़ा हुई है रास्ता, तो उसी प्रकार आज का जगाई माधाई को उद्धार करने के लिए ये हमारे अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भवन संस्थापक आचार्य श्री गोपाल ने सबके लिए दीपदान कार्यक्रम और इसी दीपदान का माध्यम से कोई भी पाखंडी व्यक्ति भी आपने जीवन को सुधार सकता है। ये है कार्तिक महीने का महत्व, जिसके लिए श्री गोपाल जी कहते हैं कि कार्तिक महीने मतलब सेल अगर होते हैं भक्ति का सेल चलता है जीवन में, अपने योजना बनाए कि दिवाली का समय चलो मेरे को सेल लग गए मेरे को कुछ सामान वगैरह खरीद करना है, जाके मार्केट में गए जाकर देखा कि जितना मैंने प्लानिंग बना के यार जितना पैसा उसमें से दमन सामान मिल रहा है तो चलो मेरे को फटाफट खरीद कर लेना। तो ये है कार्तिक महीना, जिस महीने में थोड़ा भक्ति करने में अधिक फल मिलता है, जैसे कि आपने 3 मिनट 4 मिनट का भगवान के सामने आरती की दीप देखा था भगवान को आरती कर लिए भगवान को आरती की, लेकिन फल मिलते अधिक से अधिक। तो ये है वो महीना जिस महीना में आपने भक्ति के द्वारा भगवान को अर्पण किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। क्योंकि भगवान ने कहा कि सबको भगवान ने स्वतंत्रता दी, आपको कुछ भी करना है करो, लेकिन मेरा अंतिम क्या इच्छा है, अंतिम इच्छा ये कि सब सर्व धर्म परित्यज्य सब धर्म को छोड़कर मां में कम शरण हो जाए मेरा चरण में आ जाए। आज जिन्होंने भगवान का चरण में समर्पित होते हैं भगवत गीता को अंतिम श्लोक में बताते हैं कि जब तो जगेश्वर कृष्ण तत्व धर्म धर्म पार्थ तथा सी विजय भूति के बारे में भी मत मानो, यहाँ पे स्वयं भगवान कृष्ण वर्तमान धनुर्धारी अर्जुन उसी जगह में निश्चित रूप से विजय होगा ही होगा, तो उसी ध्वजा को पकड़ के रखने का और उसी ध्वजा को पकड़ने का तरीका जो है वो है जुगधर को बोलना। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, कार्तिक महात्मा की जय, दीपदान कार्यक्रम की जय, जय निताय गौर प्रेमानंद। कुछ अनाउंसमेंट है, अगले 25 नवंबर को मंडे संडे ये चेंबूर में एक रथ यात्रा कार्यक्रम है, चेंबूर यात्रा याद रखिए डेट अगले 25 तारीख में।